वामपंथी दल की भूमिका आगे। कांग्रेस समाजवादी दल। गांधी जी के रहस्यवाद तथा समाजवादियों के रूढ़िवाद के विरुद्ध कांग्रेस ने वामपंथी पक्ष का एक विवेक युद्ध विद्रोह के रूप में उभरा। उसको सैद्धांतिक प्रेरणा मार्क्सवाद तथा लोकतांत्रिक समाजवाद से मिली तथा लोक साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवादी तथा समाजवादी संस्था के रूप में सामने आए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कांग्रेस वामपंथी लोग न केवल समाजवाद विरोधी थे अपितु तो ये समाजवाद को अपना राष्ट्रीय जीवन का आधार बनाना चाहते थे। इसी उद्देश्य के लिए उन्हें दो पक्षीय युद्ध करना पड़ा, एक ओर विदेशी समाजवादी तथा उनके भारतीय सहयोगियों से और दूसरा दूध पानी राष्ट्रवादियों यानी दक्षिण पंथी से जो समाजवाद के साथ समझौता करने को उद्यत था। वे लोग गांधी जी को 1922 का सहयोग आंदोलन को समय वापस लेने की नीति, जबकि देश एक लोकप्रिय विद्रोह के करा खड़ा था अथवा उनके 131 के सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने और 34 में उन्हें पुनः निलंबित करने की नीति था 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की नीति की आलोचना की और यह कहते थे कि सच्चे राष्ट्रवाद के साथ मेल नहीं खाता क्योंकि इसकी नींव फिसलन भरी है। जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और अन्य लोगों ने बिहार समाजवादी दल की नींव रखी। 1933 में पंजाब समाजवादी दल का गठन हुआ और अक्टूबर 1934 में विधिवत अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ जिसमें उसका संविधान तथा 15 सूत्रीय कार्यक्रम में निश्चित किया गया। इस दल की योजना यह थी कि श्रमिक तथा कृषक संघों में भाग लिया जाए। इनकी यह भी योजना थी कि विधानमंडलों के कार्य को बाहर के कार्य से जोड़ा जाए, उनको क्रांति के लिए प्रयोग किया जाए। यह स्मरण है कि 1930 के उपरांत समाजवाद युगों में बहुत लोकप्रिय था परंतु इसके आदर्श कभी स्पष्ट नहीं हुए, प्रायः एक अनिश्चित ही भावना थी। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र मार्क्सवादी थे परंतु एम आर मसानी और अशोक मेहता लोकतंत्रवादी समाजवादी थे और अच्युत प्रवर्धन तथा राम मनोहर लोहिया गांधीवादी थे। यद्यपि मार्क्सवाद धारा कभी भी बहुत संख्या में नहीं था परंतु यह समाजवादी दल में था, कार्यकर्ताओं में सबसे प्रभावशाली था। कांग्रेस समाजवादी दल पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता मानता था, उनके माध्यम से उसने कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न किया, किंतु पंडित नेहरू कभी विधिवत इस दल में सम्मिलित नहीं हुए। कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस का एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन नहीं था, अपितु इसका गठन कांग्रेस के भीतर कार्य करने, उसे सुदृढ़ बनाने और इसकी नीतियों को साकार करने के लिए किया गया था। फिर भी दक्षिण पंथी कांग्रेस इन लोगों को अंतरराष्ट्रवादी कहते थे और उन्हें देश के स्वतंत्रता संग्राम में अविश्वसनीय मानते थे। साम्यवादी इनको समाजवादी, फासिस्टवादी तथा झूठे समाजवादी मानते थे। कांग्रेस समाजवादी दल उत्तर में साम्यवादियों को रूस के उपग्रह की संज्ञा देते थे और समाजवाद को धोखा देने वाले और मार्क्स के तर्क को तोड़ने मरोड़ने वाले मानते थे। कांग्रेस समाजवादी दल ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को जन विरोधी माना और साम्राज्यवादी तथा राष्ट्रवाद प्रतिक्रियावादी शक्तियों का संगठन कहा। वे 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनाने के पक्ष में नहीं थे। वास्तव में यह समाजवादियों का प्रभाव था कि 1936 में कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में जनता की सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने का वचन दिया था। कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस से इस बात में भी सहमत नहीं था कि अंग्रेज की द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की कुछ शर्तों के अधीन सहायता की जाए। उनका कथन था कि युद्ध केवल साम्राज्यवादी शक्तियों का संसार को पुनः विभाजित करने के लिए ही है। वे चाहते हैं कि कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी सार्वजनिक संघर्ष चलाए और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया था। 1942 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाई। ये लोग शक्ति हस्तांतरण के लिए भी बातचीत करने के पक्ष में नहीं थे तथा चाहते थे कि समाजवाद, समानवाद तथा संप्रदायवाद के भावनाओं को समूल नष्ट करने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन चलाया जाए। ये लोग मुस्लिम लीग को अंग्रेजों के सहायक तथा श्री जिन्ना को देशद्रोही तथा साम्राज्यवाद की कठपुतली मानते थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता का आधार और अस्थायी समझौते को नहीं बनाना चाहते थे, अब तो ये आर्थिक तत्वों को जो दोनों के लिए एक महान समान महत्वपूर्ण है ये आधार बनाना चाहते थे। इस दल ने देश के बंटवारे की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह तो अंग्रेजों के सम्मुख हथियार डालने के समान है, परंतु ये अभी स्वीकार करने को तैयार थे कि वे स्वयं भी विस्तृत क्रांतिकारी आंदोलन चलाने में असमर्थ हैं। श्री पी एल लेखवाल ने समाजवादी दल की रचनात्मक भूमिका को इस शब्द में व्यक्त किया है, यद्यपि कांग्रेस के नेताओं ने अपना रुख नहीं बदला और प्रायः जहां तक अधिकांश लोगों की बात है ये लोग इनके विरोधी ही रहे, फिर भी इनके गठन के एक वर्ष के अंदर यह दल प्रमुख संस्था के विचारों को प्रभावित करने में सफल हो गया तथा कि इसे सार्वजनिक संस्था बनाया जाए और सार्वजनिक रूप से कार्यवाही की जाए। कांग्रेस की नीति पर समाजवाद का प्रभाव स्पष्ट था। समाजवादी दल की भूमिका कांग्रेस के भीतर और बाहर दोनों रूप से महान थी। वास्तव में कांग्रेस के भीतर यह समस्त अतिवादियों के लिए एकत्रित होने का केंद्र बिंदु बन गया। कांग्रेस के बाहर यह कृषक संगठन को मिलाने में सफल हुआ, भिन्न भिन्न व्यापार संघों के कांग्रेस तथा संघ को एकत्रित करने में सफल हुआ, अन्य अतिवादी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त करने में सफल हुआ और इसे समाजवाद को समय तक एक विद्याविनोद की चर्चा का विषय था, भारत के राजनीतिक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। अन्य लघु वामपंथी आंदोलन। समाजवादी आंदोलन ने 1939-40 के बीच अनेक लघु वामपंथी आंदोलनों के लिए शिशुगृह की भूमिका निभाई। इनमें से बहुत से वामपंथी दल व्यक्ति विशेष के चारों केंद्रित थे और जो है व्यक्ति विशेष मृत्यु को प्राप्त हुए अथवा कार्यरत नहीं रहे आंदोलन ही लगभग समाप्त हो गया। फॉरवर्ड ब्लॉक। 1 मार्च 1940 को सुभाष बाबू ने महात्मा गांधी से मात खाने के उपरांत एक नया दल फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। इस ब्लॉक में कांग्रेस के उद्देश्य नीति कार्यक्रम सभी पूर्णतः वैसे स्वीकार कर लिया, परंतु उसे कांग्रेस के उच्च आदर्शों पर विश्वास नहीं था। वे समस्त समाज विरोधी अतिवादी और प्रगतिशील तत्वों को एक झंडे तले एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने वामपंथी एकीकरण समिति का गठन किया। बोस कांग्रेस को अंग्रेजों के सहयोग की नीति के विरोधी थे और वह अंग्रेजों को देश के बाहर निकालने के लिए विदेशी सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए भारत के बाहर तक गए। 1947